ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः शिवभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षनाय च। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद छ अध्याय 16 श्लोक संख्या 7। अध्याय का शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। नित्या नित्यस्य अर्थस्य संबंधो यन्नृत्यो दृश्यते नृशो आवदयस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि नित्यस्य अर्थस्य संबंधो नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि नित्यस्यार्थस्य संबंधो नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि नित्यस्यार्थस्य संबंधो यन्नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि नित्यस्यार्थस्य संबंधो यन्नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि नित्यस्यार्थस्य संबंधो यन्नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि। नित्यस्यार्थस्य संबंधो यन्नित्यो दृश्यते नृशो आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि। नित्यस्यार्थस्य संबंधो यन्नित्यो दृश्यते नृषु आवदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि पढ़ी पढ़ी सुंदर चैतन्य प्रभु पढ़ी नित्यसार्थस्य संबंधो पढ़िए पढ़िए हिंदी में और कोई नहीं भक्त लोग पढ़ो अरे बोल पढ़ो आप माता जी शब्दार्थ नित्यस्य नित्य अर्थस्य वस्तु का संबंध संबंध ही निसंदेह अनित्य अनित्य क्षणिक दृश्यते दिखाई पड़ता है नृशो मानव समाज में यावत जब तक अस्य जिसका ही निसंदेह संबंध संबंध ममत्वम मालिकाना ममता तावत तब तक एव निसंदेह ही निश्चय ही श्री श्रीराधरास बिहारी जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ताई गौर सुंदर की, शील प्रभुपाद की, तो बोल सकते हैं ना जय। अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं और शेष पशु योनि में जन्मती हैं। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं और शेष पशु योनि में जन्मती हैं। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं किंतु इनके संबंध अस्थाई हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है उसके प्रति लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। दोहराएंगे, कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं और शेष पशु योनि में जन्मती हैं। यद्यपि दोनों ही जीवात्माएं हैं किंतु इनके संबंध अस्थाई हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है उसके प्रति लगाव रहता है, किंतु उसके बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होने के साथ ही इसी जीवन में जीवात्माओं के बीच के संबंध अस्थाई हैं। इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होने के साथ ही इस जीवन में जीवात्माओं के बीच के संबंध अस्थाई हैं। चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अथवा हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चय ही नित्य है किंतु शरीर रूपी अनित्य परिधान से आवृत होने से उसकी अनित्यता प्रकट नहीं होती। देहिनो यस्मिन था देह कौमारम यवनम जरा, इस शरीर के साथ लगा आत्मा निरंतर बालपन से तरुणापा और फिर बुढ़ापे में जाता रहता है। इस प्रकार यह शारीरिक परिधान अस्थाई है किंतु जीवात्मा अस्थाई है। जिस प्रकार पशु एक स्वामी से दूसरे स्वामी के यहाँ चला जाता है उसी प्रकार जीवात्मा जो कुछ काल तक चित्रकेतु के पुत्र रूप में या वही जब अन्य शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सारा स्नेह संबंध टूट गया। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जब कोई व्यापारिक सामग्री किसी के हाथ में रहती है तो उसकी होती है, किंतु दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वह पराई हो जाती है। तब न तो उसके साथ कोई संबंध रह जाता है, न कोई स्नेह और न कोई शोक ही करता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्रमांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में नारद मुनि की कृपा से जीवात्मा मृत शरीर में प्रवेश होकर के चित्रकेतु को उपदेश दे रहा है। प्रायः जब कोई स्वजन या अपने पुत्र या परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो घर के लोग शोक करते हैं, माताएं विलाप करती हैं, भाई विलाप करता है, बहन रोती है, संबंधी लोग भी रोते हैं। उस शोकातुर परिवार में कोई सांत्वना देता है, कोई कहता है हमारी माँ मर गई, कोई कहता है हमारी दादी मर गई। ये कहीं व्यक्ति के लिए अलग अलग संबंध हैं, किसी की चाची मरी है तो किसी की बहन मर गई है, अलग अलग एक ही शरीर के साथ अलग अलग संबंध हैं। कोई मातृ संबंध से संबोधित करता है, कोई कहता है हमारी बहन थी, कोई उसी शरीर के लिए कहता है हमारी नानी थी। अलग अलग संबंध से अलग अलग लोग संबंध ज्ञापित करते हैं। मरा है कहीं व्यक्ति लेकिन संबंध अलग अलग हैं। किसी का पुत्र मर गया है, किसी का भाई मर गया है, किसी का चाचा मर गया है क्या वास्तव में वो संबंध क्या है? पत्नी कहती हमारा पति मर गया है, माँ कहती हमारा बेटा मर गया है, मरा कौन है वास्तव में? और संबंध है क्या? संबंध वास्तव में कोई तथाकथित है, मिथ्या संबंध है। ये कहीं शरीर के लिए अलग अलग संबंधी अलग अलग संबंध से उसका भाव व्यक्त करते हैं। यह संबंध जो है बदलता है, देह के छूट जाने के साथ ही संबंध भी बदल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई बैल बेच देता है किसी को, तो जिसका बैल रहता है उसका स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है, और जो बैल खरीद लेता है अब वो उसका मालिक हो जाता है, वो फिर किसी और को बेच देता है तो अब वो मालिक हो जाता है। जैसे गांव में हम लोग देखे हैं, गांव में ही दूसरे को लोग बेच देते हैं बैल या जो भी पशु, तो बैल जिसका पहले रहता है उसके दरवाजे पर आता है प्रायः, और आकर खाने लगता है खली भूसी जो भी। तो घर की कभी कभी स्त्रियां गाली देती हैं, अरे किसका बैल आ गया? जब देखते हैं कि तो हमारा ही बैल था पहले। एक बार हमारे गांव में एक व्यक्ति ने बैल किसी को बेच दिया था, और बैल जो है जब भी बाहर से आता था तो पुराने मालिक के घर ही चला आता था, और अन्य बैलों के साथ वो खाता था। तो एक दिन उसकी औरत ने कहा कि गाली दिया भोजपुरी में कि नतिया अपने बैल को क्यों नहीं संभालता है, गाली देकर जैसे नतिया बोलते हैं। तो जो बैल वाले के यहाँ जो बैल खरीदा था उसके यहाँ गई, बोली तुम्हारा बैल हमेशा हमारे यहाँ आता है और आकर घास भूसा खा जाता है। तो कहा कि ये बैल आपका ही तो है। ये बैल आपका ही है, ये तो अभी हमारा हुआ है। बैल वास्तव में है किसका? वो जो मालिक है, पहले वाला बेच दिया है तो अभी उसका दूसरा मालिक हो गया है, कुछ समय के बाद वो बेच देता है तीसरे को तो दूसरा तीसरा मालिक हो जाता है। बैल वास्तव में किसी का नहीं है, ये केवल मान्यता है कि हमारा बैल है। बैल बैल में जो जीवात्मा है अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता है, जहां जाता है वहां संबंध बन जाता है। तो चित्रकेतु को जीवात्मा कह रहा है कि वास्तव में हम आपके पुत्र नहीं हैं। आप सोचते हैं कि हमारा पुत्र है, हम आपके पुत्र नहीं हैं। ऐसे हमारे कई माता पिता हुए हैं पहले भी, हम पशु योनि में, वृक्ष योनि में, कीट पतंग के योनियों में कई बार हम देह परिवर्तन करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है और जहां देह प्राप्त करता है उस देह के माता पिता भी होते हैं, और देह जो है अनित्य है, कुछ समय तक रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है। जब नारद जी ने जीवात्मा को पुनः मृत शरीर में प्रवेश कराया तो जीवात्मा कह रहा है, चित्रकेतु से कह रहा है कि नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए पुनः मृत शरीर में प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, जीव उच्च हो। जीव ने कहा, क्या कहा? जीवा जीव उवाच, कस्मिन जन्मयि महियम पितरो मातरो भवन कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य देवत्रिय नृयोनिषु। कस्मिन जन्म यमि महियम पितरो मातरम मातरो भवन कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य देवत्रिय नृयोनिषु। जीव अपने कर्मानुसार संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, जीव अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे नदी के प्रवाह में बालू जो है घूमते रहता है, नदी में बालू पानी के प्रवाह से घूमते रहता है, कभी बालू एक का वियोग करता है, दूसरे से संयोग करता है, या पानी में बहने वाले तिनका पर जोंक सवार होती है। जोंक आप लोग जानते होंगे, जल में एक रहने वाली एक जंतु है। तो जोंक कभी एक तिनका से दूसरे तिनके पर सवार होती है, जल के प्रवाह से वो घूमते रहती है जल के साथ में, कभी इस तिनके पर कभी उस तिनके पर। जिस तिनके पर रहती है वह संबंध कुछ समय के लिए होता है, फिर जल के प्रवाह से दूसरे तिनके पर जाती। उसी तरह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहमान होता है अपने कर्मानुसार। जैसा भगवान कपिल ने कहा है कि जीव भगवान के दृष्टिकोण में, भगवान के अध्यक्षता में शरीर बदलता है, और कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी भूलोक में आता है, कभी अतल अतल बीतल सुतल महातल पताल में जाता है, कभी जनलोक तपलोक महरलोक सतलोक ब्रह्मलोक में भी जाता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी देवता का बड़ा पद प्राप्त कर लेता है, और फिर देवता से कभी चींटी के योनि में भी आ जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जैसे सर्किल में हम लोग रिंग सर्किल होता है उसमें लोग घूमते हैं झूला, वो झूला कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। उसी तरह 84 लाख योनियों के सर्कल में जीव जो है कभी निम्न योनि में जाता है, कभी उच्च शरीर को प्राप्त करता है। यह कुछ समय के लिए अस्थाई लगता है, लेकिन अस्थाई नहीं है, यह अनित्य है। काय का नाम नित्यता, ये शरीर को ही हम लोग नित्य मान लिए हैं कि हम नित्य हैं, मैं ही देह हूं, लेकिन हम इस शरीर में हैं, लेकिन शरीर से बिल्कुल अलग हैं। और शरीर में रहते हुए ऐसा बोध होता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं शरीर में हूं, ऐसा बोध नहीं होता, ऐसा बोध होता है कि मैं ही शरीर हूं। शरीर में कुछ पीड़ा होता है तो ऐसा आत्मा का पृथक बोध नहीं होता है, बल्कि आत्मा शरीर में ऐसा रच मच गया है, रच पच गया है कि वो लगता है कि मुझे ही पीड़ा होती है। ऐसा अनुभूति नहीं होती है कि मैं, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, शरीर को पीड़ा हो रही है। जीव को माया के द्वारा शरीर में ऐसा बांध दिया जाता है, ऐसा बंधन हो जाता है कि वो अपने को शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, शरीर के पीड़ाओं के अनुसार वो प्रभावित होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब काला चश्मा पहन लेता है तो उसको सब काला दिखाई देता है, जब ब्लू या हरा चश्मा पहनता है तो सब हरा दिखाई देता है। तो शरीर रूपी यंत्र में आत्मा को ऐसे बांध दिया गया है, इतना अच्छी तरह से बांध दिया गया है कि अपने को शरीर ही समझने लगता है, या शरीर के बोध में बोधित हो जाता है, शरीर में ऐसा प्रशिक्षित हो जाता है कि शरीर का भाव आत्मा पर परिदृश्य परिलक्षित होने लगता है। आंख पर चश्मा ऐसा है, लेकिन चश्मा के अनुसार आंख की दृष्टि प्रतीत होती है। कोई छोटा व्यक्ति है तो बड़ा लेंस है तो बड़ा दिखाई देता है, या कुछ ऐसे लेंस होते हैं कि बड़ा आदमी भी छोटा दिखाई देता है। कोई बहुत लोभी है तो छोटे आदमी को भी समझता है बहुत धनी पैसा वाला होगा, जरूर पैसा देगा। लोभ रूपी चश्मा जब लग जाता है व्यक्ति को तो छोटा आदमी भी उसको बड़ा दिखाई देता है। लगे लोभ चश्मा चखनी, लघु पुण्य बड़ो लखाए। जब आंख पर लोभ का चश्मा लग जाता है किसी व्यक्ति को, आदमी सोचता है ये लाइफ मेंबर जरूर बनने वाला है ये जो है आदमी डोनेशन जरूर देगा लोभी को धन प्रिय है, कामी ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है और लोभी को धन प्रिय होता है, लोभी के प्रिय दाम। उसी तरह जब व्यक्ति शरीर में बिल्कुल आसक्त हो जाता है तो उसको शरीर ही अपना स्वरूप दिखाई देता है, देह में ही आत्मबुद्धि कर लेता है, देहात्म बुद्धि। आत्मबुद्धि बहुत किसी किसी को होती है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यति तत्व। कोई कोई आत्मा के स्तर पर विचार करता है। तो हम लोग सब लोग शरीर के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। कोई पूछे आप कौन हैं, तो बोलते हैं मैं पांडे जी हूं। आप कौन हैं, मैं चौबे जी हूं। आपका गांव कहाँ है, तो हमारा गांव महाराष्ट्र के नासिक के बगल में ये गांव है। आप किस परिवार के हैं, तो अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, अपने गोत्र का ये नाम बताता है। ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में मिथ्या चीज है, ये शरीर के लिए बनाया गया है, शरीर के साथ भी खत्म हो जाता है, कभी कभी शरीर के रहते ही संबंध विच्छेद हो जाता है। पुत्र भी, माता पिता जिसको अपना पुत्र मान करके बहुत प्रेम करते थे, पुत्र ही पिताजी से अलग हो जाता है, पिता पुत्र अलग अलग हो जाते हैं, और संपत्ति को लेकर पिता पुत्र में शत्रुता भी हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये जो संबंध है यहीं पर वर्तमान में ही बिगड़ जाता है। संसार का सबसे मधुर संबंध है पति पत्नी का, पति पत्नी का जो संबंध है सबसे मधुर संबंध है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का। लेकिन ये संबंध भी कभी ऐसा समय आता है कि अलग हो जाता है। वास्तव में संबंध बनाया गया है, हम हैं नहीं। जैसे कोई बहुरूपिया है, रूप बना लेता है, उसका स्थाई रूप नहीं है। कभी कभी बहुरूपिया जो है पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बन जाता है, और गांव में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो गांव वाले चकित हो जाते हैं, अरे ये व्यक्ति तो निर्दोष है, कोई अपराधी नहीं, इसको क्यों पुलिस अरेस्ट कर रही है। कभी कभी बहुरूपिया ऐसा करता है, गांव में आता है पुलिस सुप्रिंटेंडेंट या पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस पहन करके किसी को पकड़ लेता है, गांव वाले सभी हो जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है ना पुलिस सुप्रिंटेंडेंट है, तो बहुरूपिया है। उसी तरह संसार जो है बहुरूपिये की तरह रूप बदलता है, इसका ये रूप नहीं है अस्थाई। हमारा अस्थाई रूप क्या है? हमारा जो अस्थाई रूप है वो देह से ढक दिया गया है। तो पति पत्नी का संबंध भी वर्तमान में ही विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, वो संबंध फिर और कहीं बन जाता है। पति विवाह कर लेता है तो कोई और पत्नी बन जाती है, या पत्नी विवाह कर लेती तो उसका कोई और पति हो जाता है, ये संबंध बदलते रहते। उसी तरह जीवात्मा भी अपने कर्मानुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपत्तये। कर्मणा दैव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार दैव नेत्रेण, ईश्वर के अध्यक्षता में जीव को देह उपपत्तये, देह प्राप्त होता है। देह प्राप्त करने में भी जीव स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्रता दी जाए तो सब लोग अच्छा देह प्राप्त कर सकते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली का देह नहीं स्वीकार करेगा, कोई वृक्ष जोनी में नहीं जाना चाहेगा। यहाँ क्या कि कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य जोनी में आती हैं, अधिकांश वृक्ष जोनी में, पशु जोनी में, जलचर जोनी में, खच्चर जोनी में, अंडज पिंडज अनेक जोनियों में जाती हैं। मनुष्यों की सबसे कम जनसंख्या है। आप कहेंगे नहीं, भारत में 100 करोड़ लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है, 1 अरब 25 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा मनुष्यों की जनसंख्या है, लेकिन मनुष्यों की जनसंख्या बहुत कम है। आप चींटियों की संख्या देखेंगे तो एक बिल में असंख्य चींटियां रहती हैं। एक स्थान में चींटियों का अगर सर्वेक्षण कराया जाए, चींटियों का जनसंख्या किया जाए, जैसे जनसंख्या गणना की जाती है, जनगणना होता है, चींटियों का जनगणना कोई नहीं कराता है। या बड़े बड़े सरोवरों में, समुद्र में मछलियां हैं, उनका जनगणना, उनका मछलियों का अगर गणना किया जाए तो मछलियों की जनसंख्या बहुत है, या वृक्षों की, मनुष्य बहुत कम है। तो कुछ जीवात्माएं मनुष्य योनि में जाती हैं, अधिकांश जो है अन्य योनियों में जाती हैं। हम जीवात्मा जिस योनि में जाता है वही हो जाता है, समझता है मैं वही हूं, और उस परिवार में जाता है उसी परिवार को मान लेता है कि यही हमारा परिवार है, उसी के लिए सब कुछ करता है, उस परिवार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, चाहे पाप करना हो या पुण्य करना हो, उस परिवार के भरण पोषण के लिए रात दिन परिश्रम करता है, क्योंकि मान लेता है कि मैं इसी परिवार का हूं। उस परिवार में आने से पहले कहां था और बाद में कहां जाएगा, विचार करे तो पता चलेगा कि हम इस परिवार के नहीं है, ये हमारे माता पिता नहीं, हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं माता पिता हूं, पिता महस्य जगतो धाता माता पिता महो, भगवान वास्तविक माता पिता हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे सुंदर ढंग से माया का पोशाक बना दिया है, उसमें ऐसे विविध रंग भर दिया है कि आदमी भूल जाता है, ऐसा भूल भुलैया है कि आदमी भूल जाता है अपने आप को, पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूं, मैं देह हूं कि आत्मा हूं। अगर कोई थ्योरिटिकल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो काम में नहीं आता है उसके। कोई परिवार में मर जाता है तो बहुत शोक करता है, शास्त्र पढ़ करके भी वो शोक करता है कि हमारे परिवार में हो गया, वो मर गए, बहुत शोक करता है व्यक्ति। तो चित्रकेतु बहुत शोक कर रहे थे, तो उनका पुत्र जो है कह रहा है कि मैं नारद जी के अनुरोध पर जीवात्मा ने कहा अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करना करता रहता हूं, इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूं तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में, अतः 21 जन्म में मेरे माता पिता थे। जीवात्मा प्रश्न करा कि आप किस योनि में हमारे माता पिता थे। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई मेरा पिता है। मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं, कैसे स्वीकार कर सकता हूं। जैसे कोई व्यक्ति सोना को बेच देता है, सोना को बेच देता है तो उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है। जिसको बेचता है वो मानता है कि हमारा सोना है। सोना है किसका वास्तव में? जो बेचा उसका है ना, खरीदा उसका है। वो है प्रकृति में सोना पहले से है भूमि में, और भूमि किसका है तो सबे भूमि गोपाल की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जगत में जो कुछ भी है सब भगवान का है, इस संपत्ति है। भगवान की संपत्ति को हम मान लें कि ये सोना हमारा है, और वो भी बेच देता है तो दूसरा कहता है हमारा सोना है। और वो सोना अगर कहीं चोरी हो गया, कहीं गिर गया तो शोक करता है व्यक्ति। कभी कभी सोना जो है आदमी का खो जाता है तो कहता है कि सोना खोना भी अमंगल है और मिल जाना भी अमंगल है। अगर सोना आपको रास्ते में मिल गया तो भी अशुभ माना जाता है, आपका सोना भूल गया तो भी अशुभ माना जाता है। ऐसे लोग ऐसे ऐसी धारणाएं ऐसी मान्यताएं हैं लोग मान। किसी को सोना मिल गया तो उसका लोग कर्मकांडी व्यवस्था के अनुसार कुछ पूजा कराते हैं। आजकल सोना मिलता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो इतना का संपत्ति है, ज्वेलरी वाले के पास ले जाते हैं कि असली है कि नकली है। असली हो जाता है आदमी बहुत खुश हो जाता है। एक सोना शोक का कारण है और एक हर्ष का कारण है। सोना एक कहीं है, जिसका भूल जाता है उसको शोक हो जाता है, जिसको मिल जाता है हर्ष हो जाता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके घर में बहुत खुशी होता है। किसी के घर में किसी लड़के का जन्म हो जाता है तो बहुत खुशी मनाता है वो, और उसके पड़ोसी के घर में शोक हो जाता है कि हमारे शत्रु के घर में कोई जन्म ले लिया है, एक और शत्रु आ गया है। जैसे कृष्ण जब जन्म लिए तो गोकुल में नंद महाराज के यहां हर्ष हो रहा था, बधाई गीत हो रहा था, लेकिन कंस के यहां शोक हो गया था। एक ही व्यक्ति हर्ष का भी कारण है और शोक का भी कारण है। कोई उसको अपना शत्रु मानता है तो यह मानते कि शत्रु के घर में एक लड़का जन्म ले लिया है तो शत्रु को शोक हो जाता है, और जिसके घर में लड़का जन्म ले वो हर्ष मनाता है। तो हर्ष शोक जो है ये भी अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, कुछ समय के लिए है। ये शत्रु मित्र भी अस्थाई हैं। हम किसी को मित्र बनाते हैं बाद में शत्रु हो जाता है, कभी शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, उत्तम तथा अधम ये दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के देहों में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर महाराज चित्रकेतु तथा रानी कृत द्युति का पुत्र ही वह जीवात्मा है, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ है, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र न था। जीवात्मा तो श्री भगवान का पुत्र है। जीवात्मा का पिता कौन है? श्री भगवान। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु, भगवान सब कुछ है। जीवात्मा का पिता श्री भगवान है। तो क्या ये जो वर्तमान में माता पिता, इनको क्या किया जाए? इनको स्लाउटर में भेज दिया जाए, या इनको कहा जाए कि आप माता पिता नहीं हो, भाग जाओ घर से? क्या संबंध किया जाए? जब हमारे वास्तविक माता पिता ये नहीं है तो इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यहां पर महाराज चित्रकेतु तथा रानी चित्रदूती का पुत्र ही वह जीवात्मा है, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ है, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र न था। जीवात्मा तो श्री भगवान का पुत्र है, और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः भगवान उसे विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस भौतिक देह से कोई संबंध नहीं रहता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह तो परमात्मा का भिन्न अंश है, वह परमात्मा का भिन्न अंश होता है और विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर और विभिन्न देहों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में तथाकथित सृष्टिकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी उसके माता पिता नहीं है। जीवात्मा ने कह दिया कि आप हमारे माता पिता नहीं है। जीवात्मा ने क्यों ऐसा कहा कि नारद जी ने उसको ऐसा बोलने को शक्ति दिया था, हम लोग आप लोग नहीं बोल सकते हैं, बोल भी देंगे तो माता पिता रोने लगेंगे तो आप भी रोने लगेंगे कि नहीं नहीं मैंने मजाक किया था। कोई अपने माता पिता को नहीं कह सकता है कि आप हमारे माता पिता नहीं हो, व्यवहार चलाने के लिए कहना ही पड़ता है। जैसे बढ़नी, घर में झाड़ू होता है उसको बढ़नी लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बढ़नी नहीं, उसको घटनी कहना चाहिए। बढ़नी जो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो बढ़नी घटती रहती है। झाड़ू को रोज झाड़ू लगाते रहिए तो एक दिन बिल्कुल छोटा रूप में हो जाता है, लेकिन घटनी को संसार में लोग व्यवहार में बढ़नी कहते हैं। बढ़नी मतलब वृद्धि हो, लेकिन वो तो घटती रहती है। उसी तरह किसी का पुत्र जन्म लेता है तो लोग बोलते हैं हमारा पुत्र बड़ा हो रहा है, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। लोग बोलते हैं नाम करेगा, तब तक नाम खराब कर देता है। तो कहते हैं कि हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, लेकिन वास्तव में बड़ा नहीं होता है, एक एक दिन वो घट रहा है। जो घटता है उसको लोग बोलते हैं बढ़ता है। जीवात्मा जो देह प्राप्त करता है, एक एक दिन उसका दिन का जो अवधि है वो घट रहा है, वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। हमारा एक एक दिन जो है माइनस हो रहा है, तो हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। लेकिन संसार का जो नियम है उल्टा है, हम लोग बोलते हैं हम बड़ा हो रहे हैं। यहां जो कुछ भी है सब झूठा के ऊपर आधारित है। पति कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, पत्नी कहती है कि मैं आपसे बहुत आई लव यू, पति भी कहता है कि आई लव यू, मैं भी प्रेम करता हूं। ये प्रेम भी जगत का मिथ्या है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। वास्तव में स्वार्थ जब तक है तब तक प्रेम होता है, जब किसी का दूसरे से स्वार्थ बनता है तो मित्रता होती है। जैसे स्वार्थ में कुछ घाटा हानि लाभ होता है, हानि होने लगता है, तो वो शत्रुता में बदल जाता है। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते थे, बोलते थे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा मेरा प्यार रहेगा, तो बोलते हैं लोग। सूरज चांद तो है और रहेगा ही, लेकिन प्रेम बीच में ही ध्वस्त हो जाता है। तुम अलग हम अलग, अलग अलग हो जाते हैं। और साथ रहते हुए भी अगर साथ हैं भी तो झगड़ा गया, तब नजदीक होते भी बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं। कभी कभी घर में रहते हुए पति पत्नी में बात नहीं होता है, पत्नी अलग बनाती है, पति अलग बनाता है, उसका अलग अपना हिसाब है, उसका अलग अपना हिसाब है। तो वास्तव में ये संबंध है क्या? वास्तव में ये संबंध भी झूठा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही खाना, झूठे चबेना, यहां सब कुछ झूठा है। वास्तविकता ये है कि ये जो संसार का जो संबंध है या संसार का जो वस्तु है वो मृग मारीचिका की तरह है, प्रतीत होता है, ये स्वप्न लोक की तरह है। कल हम लोग गए थे तो उस बिल्डिंग का सोसाइटी का नाम था स्वप्न लोक, स्वप्न लोक उस सोसाइटी का नाम था। वास्तव में लोक जो है सपनवत ही है, स्वप्न में जो वस्तु नहीं है वो भी यथार्थ प्रतीत होता है। ऐसे स्वप्न में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम राजा बन गए हैं, तो यहाँ यह वहां पर यह भाव नहीं होता है कि मैं राजा नहीं हूं, वहां वास्तविकता होता है कि मैं राजा बन ही गया हूं। स्वप्न में कभी कभी राजा भी रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। तो जब तक वो स्वप्न देखता है, जब तक वो जगता नहीं है, तब तक यथार्थ नजर आता है कि वास्तव में राजा बन गया हूं। जैसे ही नींद टूटता है, जब नींद टूटता है तब वास्तविकता प्रतीत होता है। आदमी माया में ऐसे सो रहा है कि मान लेता है कि हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे हैं सास हैं, ससुर हैं, ये स्वप्न की तरह है। जब जगता है उसको जब ज्ञान होता है तब अनुभव होता है कि वास्तव में ये संबंध जो है व्यवहार में काम चलाने के लिए, वास्तविकता में नहीं है। जैसे कागज के ऊपर मान्यता दे दिया जाता है कि ये 100 रुपये का नोट है, ये धारक को 100 रुपये का विनिमय करने का अधिकार दिया गया, कागज पर लिख दिया जाता है, कागज पर मान्यता दे दिया, रिजर्व बैंक ने मान्यता दे दिया कागज के ऊपर कि 100 रुपये का इसका वैल्यू है। लेकिन है क्या वास्तव में, वो कागज ही है, मान्यता दिया गया है कुछ समय के लिए। कभी कभी रिजर्व बैंक उसको निरस्त कर देता है कि 100 का ये नंबर का जितना नोट है कैंसिल किया जाता है, 100 का नोट रखे भी रहेंगे तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं प्राप्त करेंगे। कभी कभी 500 का नोट, 1000 का नोट, उसका वैल्यू जो है खत्म कर दिया जाता है कि ये नंबर का नोट इसका वैल्यू खत्म कर दिया जाता है। ते वैल्यू दिया गया है कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वैल्यू खत्म कर दिया जाता है। जैसे पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है कि ये घर को आप बेचने के लिए आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है, कुछ समय के लिए पावर ऑफ अटर्नी है आपको बेचने का, लेकिन उसका असली मालिक जो है कोई और है। वो मालिक जब चाहे पावर ऑफ अटर्नी आपका ले सकता है। उसी तरह वास्तव में अधिकार जो है इस संसार का वास्तविक मालिक भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माम गृद्ध कस्विद्धनम। ये संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा है, हम इसके मालिक हैं। कुछ समय के लिए मालिक बन भी जाते हैं हम लोग कि हम मालिक हैं, तो वो मालिक का अधिकार कब तक रहता है? मान लीजिए जब तक जीवित हैं तब तक रह सकते हैं, बाद में मर जाएंगे किसी और जगह जन्म लेंगे। कभी कभी शत्रु के घर में भी व्यक्ति जन्म ले लेता है, तो शत्रु के घर में जन्म ले लेता है तो वो पहले वाला भाव नहीं रहता है कि ये हमारा शत्रु है। अगर ये भाव आ जाए तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, मार देगा आदमी, अपने लड़के को ही मार देगा कि हमारा शत्रु ही पुत्र बनकर आया है। चित्रकेतु महाराज का जो पुत्र था हर्ष शोक, यहां पर प्रभुपाद जी के उसका नाम हर्ष शोक था। हर्ष हुआ बाद में शोक हुआ। यहां हर वस्तु से, हर व्यक्ति से व्यक्ति को हर्ष होता है और शोक भी होता है, दोनों होता है। कोई ऐसा संबंध नहीं है जो हमेशा हर्ष ही देता रहे, वो शोक भी देता है। मिलता है तो हर्ष होता है, बिछुड़ जाता है तो शोक होता है, या कभी कभी मिलने पर भी शोक होता है, बिछुड़ जाने पर हर्ष होता है। कभी कभी परिवार में कोई बदमाश आदमी हो जाता है तो परिवार के लोग सोचते हैं कि कब इस घर से चला जाए, तो चला जाता है तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं। तो कभी संयोग से शोक भी होता है, कभी बिछुड़ जाने से हर्ष होता है। ये संसार का नियम है हर्ष शोक। कोई वस्तु सदा सर्वदा सुख नहीं दे सकता है। जैसे देह मिलता है तो आदमी को बहुत, हमारा देह जो है सुख का कारण है, देह के द्वारा हम सुख भोगते हैं। जैसे देखना है तो आंख के द्वारा देखते हैं, गंध लेना है तो नाक से गंध लेते हैं, कुछ खाना है तो जीवा से स्वाद लेते हैं। ये शरीर जो है सुख दुख देने का माध्यम है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति खूब आनंद लेता है। यही शरीर बाद में दुख का कारण हो जाता है। जब शरीर रुग्णावस्था में हो जाता है तो दुख देने लगता है। जो सुख दे रहा था अब दुख दे रहा है। तो व्यक्ति सोचता है कि अब इस शरीर से कब मैं विलग हो जाऊं। जिसे हमेशा लगा रहना चाहता था वो सोचता है कि अब कब हमारा, लोग बोलते हैं बूढ़े लोग कि हमारा पोथी भगवान ने कहीं भूलवा दिया है लगता है, हमारा कब नंबर आने वाला है। बूढ़े लोग प्राय बोलते हैं कि मेरा लगता है खाता बही भगवान ने कहीं पेंडिंग में डाल दिया है, कब आएगा, मैं अब मरना चाहता हूं, बहुत कष्ट है। ये शरीर ही जो सुख का, एक दिन सुख का कारण था, अभी दुख का कारण हो गया है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर से कोई भोग नहीं भोग पाता है व्यक्ति, तो शरीर से सोचता है कि कैसे जल्दी अलग हो जाऊं। कभी कभी लोग शरीर के पीड़ा से जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं लोग। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि जो व्यक्ति आज मित्र है वही कल शत्रु बन जाता है। मित्र तथा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध हमारे आचार व्यवहार में उत्पन्न है। चित्रकेतु अपने पुत्र मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप में सोच सकते थे। वे सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जो अपने पुत्र असमय में अकाल मृत्यु, जो असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र को जन्म देते ही खो देते हैं, या कई माता पिता उसका पुत्र जुआ अवस्था में मर जाता है, या बाल्य अवस्था में मर जाता है, या जन्म लेकर के माता पिता का सेवा ले लेता है और माता पिता सोचते हैं कि बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारा भरण पोषण करेगा, तब तक पुत्र मर जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो पुत्र रूप में शत्रु ही जन्म लेता है, और शत्रु अपने शत्रु के यहां पुत्र बनकर आता है और शत्रु से सेवा लेकर के चला जाता है। तो जो पुत्र असामयिक समय से पहले मर जाता है उसको शत्रु कहा जाता है, कि हमारा पुत्र नहीं था, शत्रु ही पुत्र रूप में आया था। जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जब जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर गया है, असमय में, ऐसी मान्यता है शास्त्र की। आपका पुत्र जन्म लिया है, कुछ समय के बाद सेवा लेकर मर जाता है, समझिए कि वो हमारा पुत्र नहीं था, शत्रु कोई था। तो नारद जी उस जीवात्मा के द्वारा चित्रकेतु को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है, एक वैसे ही है, कुछ समय के लिए संबंध ऐसा लगता है मृग मारीचिका की तरह। जैसे मृग को रेगिस्तान में जल प्रतीत होता है, रेगिस्तान में जब जीव मृग जो है रेगिस्तान में भागता है जल के लिए, उसको यह लगता है कि आगे जल अब मिलने वाला है, आगे जल मिलने वाला है, लेकिन वास्तव में वो जल है नहीं, जल की केवल प्रतीति है। ये धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे प्रतीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहूं हरिपद नीति रे। ये धन जौवन पुत्र परिश का क्या प्रतीति है, क्या विश्वास है, यह स्थाई है नहीं, कोई परमानेंट नहीं है, ऐसे ही है जैसे कमल दल के ऊपर जल टलमल टलमल करते रहते हैं, कभी भी गिर सकता है, ये संबंध कभी भी च्युत हो सकता है, ये देह भी जिस पर हम गौरव करते हैं, देह भी हमारा नहीं है, देह आपके अधिकार में नहीं है। अगर व्यक्ति को देह ही अपना वश में नहीं है तो और किसको वश में कर सकता है। देह कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी आलस प्रमाद में हो जाता है, बीमारी ग्रस्त हो जाता है, ये देह भी हमारे वश में नहीं है। बोलते हैं कि हमारी स्त्री बहुत पतिव्रता है, हमारी आज्ञा के अनुसार चलती है, नारी लोग बोलते हैं ना स्त्री को नारी, और इसको भी नाड़ी बोलते हैं, डॉक्टर नाड़ी पकड़ करके आपका परीक्षण करता है, तो बोलते हैं वैद्य जी नाड़ी परीक्षण करते हैं और परीक्षण करके सब बीमारी बता देते हैं, इसको भी नाड़ी बोलते हैं। एक घर की नाड़ी है और एक हमारे शरीर की नाड़ी है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। घर में स्त्री अगर न हो तो घर बिन घरनी घर भूत के डेरा, घर में स्त्री नहीं है तो घर का कौन श्रृंगार करेगी, घर का साफ सफाई करना, घर का देखभाल करना, मेहमान आते हैं तो घर में स्त्री उनको भोजन बनाकर खिलाती है, पति तो बाहर का काम करता है। आजकल भले उल्टा हो रहा है कि पति घर का काम संभालता है और स्त्री बाहर का काम संभालती है, उल्टा हो गया है आजकल स्त्रियों को बाहर में जल्दी जॉब मिल जाता है, पति बाध्य होकर घर में पत्नी का काम करता है, पत्नी कहती खाना बनाकर रखना सब कुछ, तो पति आदेश पालन करता है पत्नी का। कलि युग में पत्नी कमाती है और पति बैठे रहता है, तो नारी जो है घर की श्रृंगार होती है। न गृहम गृहमुच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता है, घर में जो स्त्री है उसको घर कहा गया है, संस्कृत में न गृहम गृहमुच्यते, घर खूब बना दिया गया है लेकिन उसमें स्त्री नहीं है, बच्चे नहीं है, तो भंगार जैसा रहता है। तो जो स्त्री है वो भी चली जाती है, नाड़ी चली जाती है, ये मृत्यु के समय नाड़ी भी बंद हो जाती है, लोग बोलते हैं कि ये मर गए, नाड़ी देखकर लोग बोलते हैं कि अब नहीं रहे, चले गए, कहां चले गए, शरीर तो यहीं पर है, जिस शरीर से हम संबंध जोड़े हैं वो शरीर यहीं पर है, गया कौन है, जीवात्मा गया है, और जीवात्मा का इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जीवात्मा का जन्म मृत्यु नहीं है, जीवात्मा तो मेहमान की तरह इस शरीर में कुछ समय तक रहा, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं परिधान है, शरीर आत्मा का परिधान है। तो जब ये नाड़ी ही साथ नहीं देती है तो घर की नारी क्या साथ देगी, सब विचार करना चाहिए। एक कवि ने लिखा है कि फिर भी ममता इतनी प्रबल है कि ममता नहीं जाती है संबंधियों से, स्त्री से, परिवार से, पुत्र से, धन से, धन से, घर से, इतना ऐसा भगवान ने माया भर दिया है, आसक्ति जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आसक्ति, विद्वांसो अपि कर्षति, माया इतनी सुंदर ढंग से रचना की है, उसमें ऐसा चित्रकारी कर दी है कि ज्ञानी लोग भी ज्ञान होते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, ज्ञान होने पर भी नहीं समझ पाते हैं। जब साथ ये नाड़ी साथ नहीं देती है तो घर की नाड़ी क्या साथ देगी, फिर भी ममता जो है नहीं जाती है, जो ममत्व है, ममोत्तम ताव देव ही, उसके प्रति लगाव रहता है किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। अपना बैल है तो अपना है तब तक लगाव रहता है, लेकिन दूसरे को बेच देता है तो मान लेता है कि वो बैल हमारा नहीं है, लेकिन जब तक अपने पास है व्यक्ति को कहते हमारा बैल है, अपना बैल ही बेच देता है तो मान लेता कि अरे आपका बैल हमारे दरवाजे पर क्यों आता है, अब तो मैं बेच दिया हूं आपका हो गया। उसी तरह आत्मा को भी एक देह से दूसरे देह में जाने के बाद देह से जो लगाव है छूट जाता है, लेकिन जब तक उस देह में रहता है वर्तमान में उसके प्रति उसको सच्चाई प्रतीत होता है कि यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। ममता तू न गई मेरे मन से, दसन टूट गए बचन न आवत, नारी निकालत घर से। कभी कभी स्त्री अपने पति को घर से निकाल देती है और सारा संपत्ति ले लेती है, फिर भी ममता नहीं जाती है। ते जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, जल जो है जाल में मछली भी आती है और जल भी आता है। जाल जो है मछली का ममता छोड़कर चला जाता है। जाल पड़े जल जात बही तजी मिनन को मोह, मछली के प्रति जल का जो आसक्ति है छोड़कर जल चला जाता है, लेकिन मछली का जल के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं छोड़ता है। जल के बिना मछली तड़प कर मर जाती है। मछली का जल के प्रति इतना आसक्ति है कि जल के बिना मछली रह नहीं सकती है, लेकिन जल का मछली से आसक्ति नहीं है, एकांकी प्रेम है। कभी कभी पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती है, से भर्तृहरि उनकी पत्नी उनके प्रति अनासक्त थी लेकिन वो पत्नी में बहुत आसक्त थे। भर्तृहरि ने कहा कि मैं जिससे प्रेम करता था वो मुझसे अनासक्त है, मैसा विरक्त है, वो मुझसे विरक्त है। अपने पत्नी से भर्तृहरि बहुत प्रेम करते थे लेकिन उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती थी। मछली जल से प्रेम करती है लेकिन जल का मछली से कोई प्रेम नहीं है। जाल में जल और मछली दोनों के जल चला जाता है। दर्शन है समझाने के लिए। तो इस संसार को भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि इतिहास पुराण सब पढ़ने के बाद भी आदमी मन से नहीं निकालता है, नहीं ये हमारे हैं, ये हमारा है, ये पराये का है, यह भाव जल्दी नहीं जाता है। आप बहुत अच्छा तरह से भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन व्यवहार में बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं व्यवहारिक दृष्टि से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रश्न है ऐसे पूछिए, जब तक लाएंगे तब तक पूछ लेंगे।
कारागृह उद्धार किए, उस समय भगवान कृष्ण ने खुद माता देवकी को बोलने की, हे माता मैं आने में थोड़ा विलंब हो गई, मैं आपका ठीक से सेवा नहीं कर पाया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना हो भागा कि आपका ठीक से सेवा नहीं कर पाया। खुद भगवान कृष्ण ने माता देवकी को वसुदेव को समझा रहे हैं, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है?
प्रभु जी का प्रश्न है कि जब भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म लिए देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में, फिर वहां से गोकुल चले गए, फिर बाद में कंस का जब वध कर दिए तो अपने माता पिता को जेल से मुक्त किए और उनसे निवेदन किए कि मैं आपका सेवा नहीं कर पाया, आप लोग बहुत सालों तक जेल में बंदी थे, हमारा कर्तव्य बनता था कि आपकी सेवा करना, लेकिन आपका हम कुछ भी सेवा नहीं कर पाए, तो इससे क्या शिक्षा मिलता है? इससे शिक्षा ये मिलता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। माता पिता बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ऐसे भगवान गीता में और कहे कि देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव माने भगवान कृष्ण, गुरु प्राज्ञ मतलब माता पिता, अपने से श्रेष्ठ लोगों की पूजा करनी चाहिए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उपा जी लिखते हैं, भाव जीव कह रहा कि आप हमारे माता पिता नहीं हैं, आप हमारे किस जोनी के माता पिता हैं, ये तो संबंध बदलते रहता है। जैसे 100 रुपया का नोट वास्तव में कागज ही है, केवल मान्यता दे दिया गया है, तो व्यवहार के लिए हम 100 रुपया का नोट ले जाते हैं तो उसे क्रय विक्रय करते हैं। उसी तरह वर्तमान में भी जो माता पिता है वो वास्तविक माता पिता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देह दिया है, माता पिता के सहयोग से देह प्राप्त हुआ है, जिस देह के माध्यम से हम भक्ति कर रहे हैं, जिस देह के माध्यम से हम अनेक प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक हो जाता है देह के माध्यम से ही, कोई विद्वान हो जाता है, कोई महान भक्त बन जाता है देह के द्वारा ही, तो देह जिसने दिया है उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? व्यवहारिक दृष्टि में बनता है, इसलिए माता पिता की सेवा भी जरूरी है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। लेकिन यह अभाव होना चाहिए कि वास्तविक माता पिता कृष्ण है, और हमारे माता पिता के भी माता पिता भगवान है, वास्तविक माता पिता भगवान है, ये भी ये जरूरी है जानना। ये जानने के बाद भी वर्तमान में जो माता पिता है वो भी पूजनीय है, वो भी सम्माननीय है, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि वास्तविक माता पिता हमारे पिता के भी पिता, ब्रह्मा के भी पिता भगवान है। ब्रह्मा के तो माता पिता जो वर्तमान में उनको भी सम्मान देना चाहिए। राधागुण महाराज बता रहे थे, हम बिहार गए थे मायापुर से, तो कहे वहीं से हम जा रहे थे, बंबई आ रहे थे, प्रथम बार जब गए थे लाल कपड़ा पहनने के बाद, तो महाराज कहे कि गांव में भी जाना चाहिए और अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो महाराज कहे कि चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में थे तो अपने माँ के लिए वस्त्र और प्रसाद भेजते थे। तो जो वर्तमान में माता पिता है, भले हमारे भौतिक माता पिता है, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि वो जो देह दिए हैं, हमारा सेवा किए हैं, हमारा भरण पोषण पालन पोषण किए हैं, तो उनके प्रति भी कर्तव्य बनता है सेवा करने का। लेकिन यह भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारे वास्तविक माता पिता भगवान है, ये सिद्धांत।
अरे फोर कैन, तो भागवत में जब वेणु महाराज का जो चरित्र आता है, तो अंग महाराज वेणु महाराज को ऐसा पुत्र पाके बोल रहे हैं कि जिसका पुत्र नहीं है वो अच्छा है, और जंगल चले गए। उस समय एक परपट में प्रभुपाद जी महाराज लिखे हैं कि जिसका सामर्थ्य है पिता माता का सेवा करना, लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो अगला जन्म में बहुत दुख में उसका जीवन बीतता है, ऐसा बोलते।
जो कुपुत्र है वो, जो सुपुत्र है, और जिसके घर में मान लीजिए ऐसा पुत्र जन्म लिया है जो माता पिता को कष्ट देता है, तो उससे अच्छा है बिना पुत्र का रहना। जैसे जो पुत्र हमारे दुख का कारण है, माता पिता के दुख का कारण है, तो उससे अच्छा है पुत्र न होना। ये शास्त्र में भी कहा गया है कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आते हैं, तो जो पुत्र माता पिता का नाम आगे बढ़ाता है, उनका सेवा करता है, अपने पितरों को नरक से उद्धार करता है, वो पुत्र है, नहीं तो मूत्र है। तो पुत्र का कर्तव्य बनता है। कोई साधु सन्यासी हो जाता है तो माता पिता की सेवा नहीं करता है, उस अवस्था में भगवान कहते हैं उसका ऋण जो है ऋण से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की सेवा के लिए माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका ऋण मैं समाप्त कर देता हूं। भगवान की सेवा कर रहा है उस अवस्था में वो क्षम्य है। अनिमाल ये पत्नी की सेवा कर रहा है और माता पिता का तिरस्कार करता है, पत्नी के लिए लोग मेंटेनेंस लेते हैं, मेंटेनेंस के ले रहे हैं पत्नी के लिए, और माता पिता के लिए कहते हैं कि आप लोग जो अपने आप मेंटेन करो। एक बार राधागोविंद महाराज कहते हैं वास्तव में मेंटेनेंस जो है माता पिता के लिए मिलना चाहिए। हम पत्नी के लिए मेंटेनेंस लेते हैं, लेकिन वास्तव में माता पिता का भी मेंटेन करना अपना कर्तव्य बनता है, इसने जन्म दिया है। और किसी के माता पिता का कोई देखभाल नहीं करने वाला है, कोई लड़का ब्रह्मचारी बन गया है, तो उसको उसका कर्तव्य बनता है कि उनके लिए व्यवस्था करे, नहीं तो मंदिर से मेंटेनेंस ले सकता है, कोई नहीं है तो से पत्नी के लिए हम मेंटेनेंस ले रहे हैं और माता पिता का कोई देखभाल नहीं करने वाला है, तो उनका भी मेंटेन करना अपना कर्तव्य बनता है। तो दो दो चीज है, भगवान के लिए अगर कोई माता पिता का त्याग करता है ठीक है, और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए माता पिता का त्याग करता है तो गलत है, क्योंकि माता पिता भी पुत्र पर आश्रित हैं। माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो पुत्र के ऊपर आश्रित होते हैं, पुत्र का कर्तव्य बनता है वृद्ध माता पिता की सेवा करना या उसकी व्यवस्था करना। शास्त्र में भी दिया है, व्यवहारिक व्यवहारिक चीज में ऐसा होता है, लेकिन भगवान की सेवा करना वो परम धर्म है। माता पिता की सेवा करना और भगवान की सेवा करना वो परम कर्तव्य बनता है।
पता है कि ये शरीर को पीड़ा होता है और आत्मा को तो पीड़ा है ही नहीं उसमें, आत्मा तो शाश्वत है हमारे, तो शरीर भी तो एक पदार्थ है जो ना गीला हो सकता है ना उसको कोई मतलब बॉडी पदार्थ के जैसा माना गया है, फिर भी दर्द किसको महसूस होता है?
जैसे आंख पर चश्मा, जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दिखाई देता है। जब मनुष्य का शरीर मिलता है, कुत्ता का शरीर मिलता है, बिल्ली का शरीर मिलता है, बाघ का शरीर मिलता है, वैसा प्रतीत होता है, वैसा बिल्कुल अनुभव होता है कि मैं यही हूँ। जैसे स्वप्न में आप राजा बन जाते हैं तो आपको लगता है कि राजा बन गया हूँ। आप ब्लू चश्मा पहनेंगे तो ऐसा ब्लू ही दिखाई देता है हर चीज, सफेद वस्तु भी ब्लू ही दिखाई देता है। दर्द शरीर के माध्यम से आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा को अनुभव होता है। शरीर के माध्यम से आत्मा को ही सुख दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में शरीर एक माध्यम है सुख दुख भोगने के लिए। शरीर को ही केवल नहीं बल्कि आत्मा भी प्रभावित होता है। शरीर दे करके माया उसको दुख भोगाती है, देह संसार दुख। इस संसार में जीवात्मा को देह के माध्यम से ही सुख दुख भोगना पड़ता है। जैसे आप कार के द्वारा, आप कार में बैठे हैं, आप चलते नहीं लेकिन कार चलता है तो आप भी चले जाते हैं कार के साथ में। आप न भी चलना चाहें लेकिन कार में बैठेंगे तो कार आपको पहुंचा देता है। भिटी गया था भिटी पहुंच जाते हैं, बोले हम तो चले नहीं, हम बैठे रहे, लेकिन कार में बैठे हैं तो कार के साथ आप चले जाते हैं जहां कार जाता है। तो देह में जीवात्मा है तो देह के अनुसार वो प्रभावित होता है। प्रभावित न होते हुए भी ऐसा होता है, अनुभव होता है, लगता है कि मैं ही प्रभावित हो रहा हूं। से कोई व्यक्ति कार खरीदा है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको अपना मान लिया है, हम देह को अपना मान लिए हैं, तो अपना मानने के चलते दुख होता है। अपना कार एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दुख होता है व्यक्ति को, शोक होता है, और टैक्सी में जा रहा है तो उसको खुशी होता है कि मैं बच गया, बहुत खुश होता है। टैक्सी वाला दुखी हो जाता है कि इतना नुकसान हो गया, 5,000 रुपए का घाटा हो गया, लेकिन जो टैक्सी में सवारी कर रहा है उसको बहुत खुशी होती है कि मैं बिल्कुल बच गया, बहुत खुश होता है। एक खुश होता है और एक दुखी होता है, मान्यता के चलते। वो टैक्सी वाला मानता है कि हमारी टैक्सी है, और जो बैठा है बोलता है हमारी टैक्सी नहीं है, चलो हमारा क्या गया, मैं तो बच गया बाल बाल। तो जीवात्मा शरीर को अपना मान लेता है, और मानने के साथ साथ में उसमें ऐसा रच पच गया है, ऐसा उसको मान दिया गया है कि वो शरीर के अनुसार सुख दुख भोगता है। अगर शरीर के अनुसार सुख दुख नहीं भोगता आत्मा तो क्यों शरीर दिया जाता है? शरीर के द्वारा आत्मा ही सुख दुख भोगता है, आत्मा को ही सुख दुख भोगना पड़ता है। कभी पाप योनि में जाता है, कभी उच्च कुल में जन्म लेता है, लेकिन सुख दुख उसको भोगना पड़ता है। इसलिए हम बद्ध आत्मा है, बद्धा अवस्था में सुख दुख भोगना पड़ता है देह के माध्यम से। देह संसार कैसे है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। है ना, कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। माया जो है उसको भिन्न भिन्न योनियों में, आत्मा जलता भले नहीं है लेकिन उसको तो सुख दुख का भागी बनना ही पड़ता है ना। फिर 9 महीने तक देह में जाता है, गर्भ में जाता है, 9 महीने तक देह के माध्यम से गर्भ में बास करता है, तो आत्मा को ही दुख भोगना पड़ता है 9 महीने तक। देह के माध्यम से उसी को दुख होता है। देह तो स्थूल पदार्थ है, भूमि जल अग्नि वायु तो जड़ है, जड़ है देह। लेकिन आत्मा की उपस्थिति में उसको चैतन्य अनुभव होता है। आत्मा जब तक है तब चैतन्य लगता है, चेतना चेतना नाम। आत्मा उपस्थित है तो शरीर आत्मा की उपस्थिति के चलते जीवंत लगता है, और इसी को काटने पर पीड़ा होता है। तो पीड़ा कौन अनुभव करता है? शरीर की आत्मा, आत्मा अनुभव करता है। आत्मा के चले जाने के बाद शरीर को चाकू लगाइए तो कहाँ हिलता डुलता है, कहाँ रोता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर के माध्यम से आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा के नहीं रहने पर शरीर को जलाइए तो भी पड़ा रहता है। आपको अभी हम जलाएंगे तो आप भागेंगे कि नहीं, रोएंगे भी। तो कौन रोता है? शरीर रोता है। शरीर के माध्यम से आत्मा ही रोता है, जैसे कार के माध्यम से शरीर ही जाता है, विमान के माध्यम से आदमी ही चलता है उतना तीव्र गति से, नहीं चलते हुए भी विमान के साथ वो चल रहा है। आत्मा दुख नहीं भोगते हुए भी शरीर के साथ उसको यातना दिया जाता है। इसलिए नरक लोक में भी जीवात्मा जाता है तो यातना शरीर के द्वारा उसको दुख भोगना पड़ता है। हाँ, नरकीय शरीर दे करके उसको नरक का सुख दुख भोगाया जाता है। आत्मा को ही दुख भोगना पड़ता है उस शरीर के माध्यम से। अगर आत्मा शरीर सुख दुख नहीं भोगता तो क्यों भिन्न भिन्न जोनियों में जाता? आत्मा ही है, इसलिए आत्मा भोगता है और परमात्मा जो है उसको दृष्टा है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में है ना कि एक शरीर रूपी वृक्ष में जो दो पक्षी हैं, एक आत्मा एक परमात्मा, एक फल को भोग रहा है माने सुख दुख भोग रहा है, दूसरा देख रहा है साक्षी के रूप में। आत्मा ही सुख दुख शरीर के माध्यम से भोगता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।